आप देखेंगे जन्नती कफन। यहाँ साथ ही साथ थोड़े से बीच में ऐड करती जाऊँ नोट्स। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की जब मौत का वक्त आया तो अपने बच्चों को बेटों को नसीहत की, कहने लगे मुझे पुरानी चादरों में कफन देना, नई चादरें जिंदों के काम आएंगी। और फिर जेरे लब मुस्कुराए और कहने लगे वैसे भी तो ये चादरें थोड़ी देर में उतर ही जाएंगी इंशाल्लाह। उनको यकीन था। आज हम जमजम में भिगो के चादरें ले आते हैं, कलमा लिखी हुई चादरें डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब्दुल्ला बिन उबई तो नबी सल्लम के कुर्ते में मदफून है। दुनिया का सबसे बेहतरीन कुर्ता अब्दुल्ला बिन उबई को कफन के लिए नसीब हुआ। जब वो फौत हुआ तो उनके बेटे जो मुखलिस मोमिन थे, अब्दुल्ला उनका भी नाम था, अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे पता है मेरे बाप में कमी थी लेकिन मुसलमान था ना, मेरी ख्वाहिश है कि वो बख्शा जाए, आप अपना कुर्ता दे दें, मैं इसमें उनको दफन करूंगा। अल्लाह के नबी किसी को मना भी नहीं करते और दिल में कदूरत नहीं थी कि अच्छा जी इसने मेरी बीवी आयशा पे इतने इल्जाम लगाए और मुझे इतना बुरा भला कहा और जलील करना चाह। आपने झट से अपना कुर्ता उतार के दे दिया और एक एहसान भी उतार दिया ना उसका, जो गज़वे बदर के मौके पर उसने किया था कि नबी सल्लम के चचा अब्बास जब कैदी बन के आए तो उनके बदन पे कुर्ता नहीं था, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि कोई है जो मेरे चचा को कुर्ता पहनाए। ऊंचे लंबे थे, किसी का कुर्ता इनको पूरा ना आया। उस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई का कुर्ता इनको पूरा आया था। अल्लाह के नबी के ऊपर ये एक एहसान था एक किस्म का, आपने अपना कुर्ता उतार के अब्दुल्ला बिन उबई को दिया, आज भी वो उसमें मदफून है। लेकिन पढ़ेंगे आप सूरह तौबा में क्या हुआ उसके साथ, फर्क नहीं पड़ता, असल चीज अंदर है, जिस्म के अंदर है, दिल है, आप जो मर्जी कर ले मरने वाले के साथ, असल चीज यह है कि वो खुद करके क्या गया। तो लिहाजा इन चीजों पे वक्त लगाने की बजाय अपने आप को आमाल में रखें। बहरहाल बड़े खूबसूरत प्यार से उसकी रूह को लपेटा जाता है। दुनिया का कफन चाहे नसीब भी ना हो, कई ऐसे अल्लाह के बंदे मरते होंगे उनको शायद कफन भी पूरा नहीं नसीब होता। मुसअब बिन उबैर जब फौत हुए तो कपड़ा ही पूरा नहीं था बदन पे, साहबा ने कहा कि नबी एक ही चादर है, पाँव छुपाते हैं तो सर खुलता है, सर छुपाएं तो पाँव खुलता है। और मुसअब बिन उबैर करोड़पति आज की दौर में आप कह सकते हैं अरबपति शहजादे थे, इतनी दौलत थी उनके पास, लेकिन इस्लाम के लिए सब छोड़ दिया। इस्लाम बंदे को इतना दौलतमंद कर देता है, ये मट्टी और कागज के टुकड़ों की कोई जरूरत नहीं होती। तो अल्लाह के नबी ने कहा इनका सर छुपा दो और पाँव पे असगर घास डाल दो। तो अब मुसअब बिन उमैर के साथ ये सब कुछ हुआ होगा, बड़े प्यार से उसकी रूह को लपेटा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ये उसे लेकर आसमानों की तरफ चढ़ते हैं। फरिश्तों की जो जमात इनको मिलती है वो पूछती है ये पाक रूह किसकी है। जैसे बंदा मोमिन दुनिया में अपनी जात से खुशबू फैलाता है ना, दीन की इस्लाम की, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। दुनिया में भी अगर आपकी जात से खुशबू फैलेगी ना तो मौत की सूरत में भी खुशबू फैलेगी। और कुछ लोग दुनिया में गंदगी फैलाते हैं, बदबू फैलाते हैं, तो फिर मरने के बाद क्या होगा। हमारी एक बहुत ही डेडिकेटेड साथी हैं, पुरानी ओल्ड साथियों में से, मुझे याद भी नहीं कब से वो हमारे साथ हैं, कभी छुट्टी नहीं की उन्होंने, कुछ नहीं किया। तो चंद दिन पहले उनका एक ईमेल आया और उसमें उन्होंने बड़ी माफियां और माजरतें करके ये बताया कि मुझे छुट्टी चाहिए और मैं 16 साल बाद अपने मुल्क जा रही हूँ और मैं अब सबको मिलूंगी ना 16 ईयर्स बाद। तो मैंने उसके बाद उनको सिर्फ बहुत अच्छी बातों में जो मुझे अच्छा लगा कि आप जरूर जाएं, खुशी का इजहार किया, मैंने उन्हें सिर्फ एक जुमला लिखा कि बी लाइक सन, वेयर एवर इट गोज गिव द लाइट्स। जहाँ जा रही है ना वहाँ महीना दो रहना है, वहाँ कोई क्लास शुरू कर रहे हैं। तो कहती मुझे इस जुमले ने इतना मोटिवेशन दिया कि आप मैं वहां कुछ करके आऊंगी। तो सूरज जिधर जाता है रोशनी देता है, ईमान वाला भी सूरज ही होता है, इधर डूबे उधर निकले, उसकी जिंदगी में वीकेंड वीकडेज नहीं होते, समर और वेकेशन और छुट्टियां नहीं होती। वीकडेज में आ गए तो वीकेंड मुश्किल, एक दिन आ गए तो 6 दिन मुश्किल, 4 दिन आ गए तो 3 दिन मुश्किल नहीं, वो तो मौके ढूंढता है कि लोगो मुझसे कुछ ले लो, ये आपका बल्ब हर दिन रोशनी देता है। कई बल्ब ऐसे भी हैं 24 घंटे लोग जला ही रखते हैं, वो तो नहीं कहता थक गया, हम कितनी जल्दी थक जाते हैं और इतने थोड़े पे राजी हो जाते हैं, बस इतनी रोशनी बहुत है, दैट्स इट, मैंने सोचा है बस इतने 2 घंटे बहुत है मेरे लिए हफ्ते में। नहीं, ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी रोशनी बढ़ती जाएगी। बहरहाल खुशबुएं आती हैं और लोग उनके साथ चलते हैं। फरिश्तों की जो जमात इनको मिलती है, रस्ते में फरिश्ते भी साथ लग रहे हैं। वो पूछती है, ये पाक रूह किसकी है? ये इसका बेहतर से बेहतर जो नाम दुनिया में मशहूर था वो लेकर चढ़ते हैं कि फलां की है। यहां तक कि आसमाने दुनिया तक पहुंच जाते हैं, वहां जाके दरवाजा खुलवाते हैं। फिर वहां पूछा जाता है, ये किसकी रूह है? फिर नाम लिया जाता है, ये फलां बेटे फलां की रूह है। दरवाजे खुलते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, यहां तक कि इसके साथ इसे दूसरे आसमान तक पहुंचाने के लिए फरिश्तों की और बड़ी जमात हो जाती है। दुनिया में हो सकता है 4-6 लोग ही हैं उसके जनाजे पे। मैं हरम में जब किसी का जनाजा उठता देखती थी, बड़ी हसरत आती थी। कहती थी, अल्लाह जब भी मौत देनी अपने नबी के शहर में दे और ईमान की हालत में दे। इतने लोग उस जमात में शामिल है, किसी एक की भी तोहफ़ारी को तो कबूल कर ही लेगा ना। और कुछ बेचारे इतने गुमनाम होते हैं, बड़े नेक होते हैं, लेकिन लोग जानते नहीं उनके, कोई उनके बैंक बैलेंस नहीं। लेकिन ऐसे बंदे के साथ सारे सातों आसमानों के फरिश्ते मिलते जाते हैं, हत्ता कि इसको सातवें आसमान तक पहुंचा देते हैं। और आपको तो सातवें आसमान पे क्या है? अल्लाह सुब्हान तआला। वहां जाकर अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाता है, बाद जगह में आता है कि उस बंदे की रूह अल्लाह के आगे सजदे में चली जाती है। लेकिन इस रिवायत में अल्फाज है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे इस बंदे की किताब बिल्लीजीन में रख दो और इसे जमीन की तरफ लौटा दो। मैंने इन्हें इसी से पैदा किया है, इसी में लौटाऊंगा और इसी से दोबारा निकालूंगा। ये सूरह तौहा की एक आयत का तर्जमा भी है कि मिन्हा खलकनाकुम, इसी से पैदा किया, इसी में जिंदा किया, इसी में दोबारा ले जाऊंगा। बस वह तुम्हें आता है कि उसको जन्नत का एक टूर दिया जाता है छोटा सा, क्योंकि अब हम जर्नी ऑफ सोल कर रहे हैं तो मुख्तलिफ चीजों को साथ एक कर लें तो बार बार सारी रिवायतों को दोहराने की जरूरत नहीं होगी। उसको कहा जाता है, जो जन्नत देख के आओ। उसको मुख्तलिफ जगह पे हिस्सा, आप जन्नत में जाते तो वहां जो लोग पहले से मौजूद होते हैं ना जन्नत में, उसके रिश्तेदार और उसके जानने वाले, उसको वो वहां नजर आते हैं। फिर वो खुश होते हैं, मिलते हैं। हदीस में आता है कि जैसे इंसानों में कुछ बड़े जल्दबाज है ना, फर 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 बोली जाते हैं, बोली जाते हैं, अपने ही बात को सुनते नहीं, अगली भी दूसरी तीसरी, अगले को आजाद कर देते हैं कि चार की बजाय एक बात के जवाब दे दो। और कुछ बड़े तहम्मुल वाले ठहरे हुए सुकून से बात करते हैं। कभी किसी की मुलाकात के वक्त पे आप अपने आप को पहचाना करें, उस वक्त हम खुलते हैं। खास तौर पर किसी बहुत प्यारे से, ये एक्साइटमेंट से हो, किसी को अबाया भी नहीं उतारने देते, जूता भी नहीं उतारने देते, उसके गले लग के पूरा दुखड़ा सुना सुनू के फिर कहते हाय हाय मैंने आपको रोक लिया। तो इंसान है ना, तो हदीस में आता है कि जिस तरह इंसान इस तरह होते हैं ना, इस तरह रूहें भी कुछ बड़ी जल्दबाज हैं और कुछ बड़ी सुकून वाली हैं। कुछ उसे जल्दी जल्दी हालात पूछती हैं, क्या है, कैसा है, क्या फलां का क्या हाल है, फलां कैसा है। बाकी रूहें को समझती है, सब्र तो करो, वो भी बड़ा थका हुआ है, उसको आराम लेने दो। फिर वहां इंसान एक दूसरे को जानता है, पहचानता है। इस तरह तक भी आता है रिवायतों में कि वो शख्स जन्नत में सबको देखता है, कहता है लेकिन मुझे वो फलां ही नजर आ रहा। कोई प्यारा मामू खालू फूफा, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त साथी जो इससे पहले फौत हो चुका है लेकिन नहीं दिखता। तो जन्नत वाले कहते हैं कि वो तो इधर नहीं आया। फिर उसके बाद सब रूहें अफसोस करती हैं कि अफसोस वो सिर्फ जीन के घड़ों में गिर गया हो। अल्लाह मला तजल नमिन हो, ये अल्लाह ने गैब के पर्दे छुपाए हुए, दुआ करे छुपे ही रहे, दुआएं करते रहा करे मरने वालों के लिए, उनको मरहूम कह के फारिग ना हो जाए कि रहम कर दिए गए। नहीं, आपकी मेरी दुआओं की जरूरत है। अपनी हर दुआ में कम अज कम एक दफा जरूर मर्दों के लिए दुआ किया करे कि अल्लाह मगफिर लहु वरहम हो, और इसी तरह कोई और दुआ। बहरहाल ये सब कुछ होने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि जाओ इसको वापस लौटाओ, क्योंकि अभी इसका कब्र का हिसाब किताब बाकी है और मेरा वादा है कि जन्नत जो है असल वो मरने के बाद मिलनी है। अभी इसका इंतजार है, अभी बरजख का वक्त कब्र में गुजारेगा। उतने ही इकराम के साथ उसकी रूह को वापस दुनिया में ले जाया जाता है। बस रिवायत में आता है कि उस दौरान जितनी देर में ये सब कुछ हुआ, दुनिया में उसको कफना के नहलाया जाता है और उसकी नमाज जनाजा रेडी होती है। तो वो सब फरिश्ते ज़मीन और आसमान के जो उसके साथ होते हैं, जितने अल्लाह चाहे वो उसकी नमाज जनाजा में शामिल होते हैं। और उसके बाद फिर जब उसको कब्र में डाला जाता है ना, तो फिर जब कब्र पे मट्टी डाल के अभी लोग हटते हैं तो उसको दोबारा जिंदा कर दिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे मौके पे, जिसकी हम इस हदीस में बेस ले रहे हैं, आपने फरमाया जब मुर्दे को दफनाया तो आपने कहा कि सल्लल्लाहु आफिया फइन्नहु युसअलुल आन, अपने भाई के लिए आफियत मांगो क्योंकि इस वक्त उससे सवाल हो रहा है। हम अमूमन उस वक्त खाने में लग जाते हैं क्योंकि मर तो गए होते हैं ना दफनाने, तो घर में अमूमन इस वक्त खाना खुल चुका होता है। किस बहू के घर से आया, क्या आया, क्या नहीं आया, और फिर रोते भी हैं, बातें भी चीते, और उधर उसकी कब्र में उससे हिसाब हो रहा होता है। हदीस में आता है, ये अब इसी हदीस को कंटिन्यू करती हूँ, कि जब उसको कब्र में डाल दिया जाता है तो कब्र में सवाल जवाब और उसके साथ क्या होता है, इसके पास दो फरिश्ते आते हैं, इसे बिठाते हैं, फयुजली सानी, फिर इससे पूछते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? मा दीनू का? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि जो शख्स तुम में भेजेंगे वो कौन थे? वो कहता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फरिश्ते कहते हैं, तुझे ये कैसे मालूम हुआ, यानी तूने तो नहीं देखा उनको? तो जवाब देता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, इस पर ईमान लाया और उसे सच्चा माना, यानी कज़्ज़ब और वस्तकबरू नहीं था, यानी किताब में ये बात पता चली मुझे। वहीं से आसमान से एक मुनादी करने वाला निदा करता है कि मेरा बंदा सच्चा है, इसके लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो। यही आगे जो हम पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे इन आयतों में कि अल्लाह उसके लिए जन्नत के लिबास ले आता है। इसको जन्नत का लिबास पहना दो, इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो, बस इसके पास जन्नत की तरोताजगी, इसकी खुशबू और वहां की हवा आती रहती है, और इसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है जहां तक कि इसकी नजर पहुंचती है, इसे कुशादगी ही कुशादगी नजर आती है। क्या डरना इस छोटी कब्र से, अमल अच्छे अल्लाह करवा ले, ये बहुत बड़ी हो जाएगी। जहां तक नजर जाती है ना, यानी आई साइड, जहां खुले मैदान में आप देखे जितनी दूर जा सकते हैं, मोमिन की कब्र इतनी खुल जाती है। अल्लाह अकबर। फिर इसके पास एक नहायत हसीनो जमील शख्स, लिबासे फाखिरा यानी फखर जिस पे किया जाए, यानी बड़ा पौश किस्म का लिबास पहने हुए खुशबू लगाए हुए आता है, और इससे कहता है, खुश हो जा, यही वो दिन है जिसका तुझे वादा दिया जाता था। ये भी कुरान की आयत के लफ्ज में आता है। ये उससे पूछता है, तू कौन है? तेरे चेहरे से तो भलाई पाई जाती है, यानी तू देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन तू कहाँ से आ गया? वो जवाब देता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ। अब तो मोमिन आरजू करने लगता है कि अल्लाह करे कि क्यामत आज ही कायम हो जाए, ताकि मैं जन्नत में पहुंचकर अपने माल और अपने अहले याल को पालू। यानी उसको कहा जाता है, वेटिंग पीरियड इधर हो, और फिर बहुत सारी रिवायत है, एक जगह आता है उसको कहा जाता है, नम कनाओ मतिल उरूस, सो जाओ, जैसे दुल्हन सोती है। दुल्हन को कोई नहीं उठाता उसके शौहर के सिवा, सब कहते हैं इसको आराम करने दो। इसी तरह अब ये बंदा दुनिया में इतनी मेहनतें करके, इतने काम करके आया है, कि अब इसको कब्र में जरा थोड़ा रेस्ट करने दो। आपने देखा होगा कि हमने कहीं भी जाना हो या कोई इंजॉय करना ना, तो हम कहते हैं उससे पहले थोड़ा रेस्ट कर ले, कुरान भी पढ़ना पढ़ाना है, थोड़ा रेस्ट कर ले, क्योंकि फिर हम इंजॉय करेंगे। तो ये जो कब्र का टाइम है ना, ये दुनिया के गमों को भुलाने का वक्त है, क्योंकि फिर इसने जन्नत में बड़ी नेमतें पानी है, और इस तरह फिर वो कब्र में अपना वक्त गुजारेगा, और इंशाल्लाह जब फैज़ा नफ़िख़ा फिस्सूर, तो उसके बाद फिर उसके साथ दूसरे मामले होंगे। अब ये तो है तस्वीर का एक रुख, हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इसमें कर ले।